તારીખ 3/3/1996ના દિવસે પૂજ્ય ભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા મહાવીરજીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 4
જયંતી ઇસકા વિચાર કિયા જાય કે જબ પ્રત્યક્ષ યોગ હોતા હૈ તીનો મે સે કિસી એક સજીવન મૂર્તિ કા ઓર આત્મ સ્વરૂપ દિખાતે હૈ દર્શાતે હૈ તબ વો આત્મરસ મે આ જાતે હૈ એસે નહીં દિખાતે આત્મરસ મે વિભોર હોકર કે ક્યોંકિ વહી ઇનકા હૃદય હૈ હાર્ટ હૈ વહી હૃદય કી ધડકન હૈ ઉનકી વહી ઇનકે પ્રાણ હૈ વહી ઇનકે જીવન હૈ वो आत्मरस से सरागोर इसकी वाणी निकलती है। ऐसे में सुनने वाले को अपने पात्रता वशात आत्मरुचि प्रकट होती है और आत्मरुचि के काल में आत्म स्वभाव के संस्कार डलते हैं, पढ़ते हैं, उसको कहते हैं कि उसको स्वभाव का संस्कार झेला। ये अध्यात्म तत्व की जो रुचि है वो रुचि के काल में ऐसा प्रत्यक्ष योग में ही स्वभाव का संस्कार मिलता है और उसी भाव में या दूसरे तीसरे भाव में वो संस्कार प्रकट होकर के बिना निमित्त निसर्गात उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसा भी होता है तो अधिगमन से यानी सजीवन मूर्ति के योग से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसा दो प्रकार बनता है। एक बार आत्मानुभव हो गया, स्वानुभूति में आनंद आ गया, अब पुनः दोबारा शुद्धोपयोग क्या 6 महीने में आना आवश्यक है? क्या अगर नहीं आवे तो क्या सम्यक दर्शन से च्युत हो जाएगा, हो जाएगा क्या? जबकि क्षणिक सम्यक दर्शन 33 सागर तक कंटिन्यू में टिका रहता है, उसकी परिणति सदैव रहती है। तो शुद्धोपयोग का नियम तो कहीं भी शास्त्र प्रमाण से तो देखा नहीं जाता, इसलिए उसका नियम बता नहीं सकते, कह नहीं सकते। सामान्यतया तो सामान्य रूप में महीने 2 महीने में तो स्वानुभव हो ही जाता है, अगर इतना तीव्र पुरुषार्थ नहीं होवे तो भी। तीव्र पुरुषार्थ में तो महीने में 10 बार भी हो सकता है या 20 बार भी हो सकता है, तो उसका कोई नियम नहीं है कि इतना महीने में होना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे कि कोई सम्यक दृष्टि देवलोक में से आयुष्य पूरा करके मनुष्य होता है, ना तो वो माता के पेट में रहता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 6 महीना में ही सम्यक शुद्धोपयोग हो जाए, ये कोई जरूरी बात नहीं रहती, वहां ऐसी स्थिति नहीं होती है, इसलिए कोई नियम है ऐसी कोई बात नहीं है। बीचरागे भगवान की प्रतिमा के सामने रोज निर्वाण की प्रार्थना करने का भाव किया जा सकता है। ऐसे भाव करने से शुभ भाव होंगे या शुद्ध भाव, क्योंकि कल आपने कहा था कि भगवान से मांगे तो निर्वाण पर मांगे, पुत्र धन की क्या इच्छा करना ठीक है। मुख्यतया तो ये शुभ भाव है, विकल्प मात्र शुभ भाव है, फिर भी बीतरागी भगवान के प्रतिमा के सामने कैसे कैसे भाव होना, इस विशेष विषय में हमने एक आर्टिकल लिखा है जो आत्म जागृति में प्रसिद्ध हो चुका है। भगवान के दर्शन, जिनेंद्र दर्शन कैसे करें, कि जैसे जिनेंद्र है वैसे ही अपना रूप है, मेरा ही ये रूप है और मेरा तो आदर्श है परिपूर्ण शुद्धि मोक्ष निर्वाण पद, मेरा आदर्श है। मेरे आदर्श की मूर्तिमंत स्थापना ये जिन प्रतिमा की स्थापना है, उसमें प्रकट रूप से बीतरागता झलकती है, उनके बीतराग की शांति भी छलकती है और अंतर्मुक्ता भी, निरवशेष अंतर्मुक्ता छिपी नहीं रहती। ऐसे ऐसे जो आत्मभाव है, जो आत्मस्वरूप को प्रदर्शित करने वाले भाव है, वो बीतरागी प्रतिमा में प्रत्यक्ष रूप से देखने में आते हैं, उन्हीं का ही दर्शन करें। तो आत्मा जो सर्व से सर्वथा भिन्न है, देहादि और रागादि से सर्वथा भिन्न है, मुमुक्ष जीव को यह भेद ज्ञान का कारण हो सकता है। और जिसको भेद ज्ञान है ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा को इस स्वरूप ध्यान का कारण बन सकता है। इसलिए प्रतिमा जी के दर्शन को में प्रतिमा जी को हम या तो ज्ञान का कारण बनाए या तो ध्यान का, केवल शुभ भाव का निमित्त नहीं बनाए, यही इष्ट है हमारे लिए। तो इस प्रकार से हम निरेंद्र दर्शन करें। कोढ़ा यह एक बड़ा फल है, क्या यह भक्ष है या अभक्ष है मैं तो नहीं जानता, इस विषय में मैं अनजाना हूं। और मेरी प्रार्थना है कि अपने आत्मकल्याण के विषय में ही प्रश्नोत्तर करें, दूसरे दूसरे प्रश्नोत्तर में मुझे अवश्य अवश्य मेरी अज्ञानता प्रसिद्ध करनी पड़ेगी। तो दूसरे दूसरे प्रश्न को हम नहीं जाए, हमारे पास समय भी बहुत मर्यादित है, इसका सदुपयोग करें। इस तरह से हमने किसी शास्त्र से पढ़ा था कि मिथ्या दृष्टि जीव सुनो शरण में नहीं जाता। सुनो कैसे है, समझ में जचती नहीं। गौतम स्वामी जी भी मिथ्या दृष्टि थे, सुनो शरण के ना जाने ही सुलझ गए, स्पष्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं है, मिथ्या दृष्टि जाता है और मिथ्या दृष्टि की संख्या भी स्वयं स्वयं में सबसे ज्यादा होती है। स्वयं स्वयं में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, सम्यक दृष्टियों की या मिथ्या दृष्टियों की? कि मिथ्या दृष्टियों की होती है। अभव्य की बात दूसरी है, मिथ्या दृष्टि की बात दूसरी होती है। अभव्य नहीं जाता वो बात जरूर है, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं जाता सो बात नहीं है। दर्शन मोहनीय कर्म और दर्शन मोहनीय परिणति के विषय में स्पष्टता करें। दूसरा तीसरा प्रश्न से मैं पढ़ता हूं। दर्शन मोहनीय कर्म और दर्शन मोहनीय परिणति बाबत स्पष्टता कर सो। प्रवीण भाई खोकाणी। दर्शन मोहनीय कर्म ये पुद्गल कर्म की प्रकृति है और दर्शन मोहनीय परिणति जीव का मिथ्यात्म भाव है। एक पुद्गल की पर्याय है कर्म परमाणु की और एक जीव के विभाव परिणाम है। ऐसे दोनों अलग अलग द्रव्य के परिणाम है। धर्म अर्थ काल मोक्ष का स्वरूप क्या है? धर्म मैंने संसार में जो प्रसिद्ध रूप से पुण्य के परिणाम है उसको यहां धर्म कहते हैं। अर्थ मैंने पैसे संपत्ति उसको अर्थ कहते हैं। काम मैंने इच्छाएं कामनाएं उसको काम कहते हैं और मोक्ष मैंने आत्मा की शुद्धि परिपूर्ण शुद्धि उसको मोक्ष कहते हैं। पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है और पुरुषार्थ का प्रारंभ कैसे व किस प्रकार प्रारंभ करें? पुरुषार्थ का जो स्वरूप है वो द्रव्यानुयोग के अनुसार जीव के अनंत गुण में एक वीर्य गुण है उसकी पर्याय है। वो पर्याय दो प्रकार की होती है। संसार अवस्था में वीर्य गुण सांसारिक पदार्थ के प्रति परिणमन करता है उसे कार्यों में लगता है और मोक्ष मार्ग में वही वीर्य गुण आत्म कल्याण के और शुद्धि के कार्य में लगता है या स्वरूप के शुद्ध पर्याय की रचना करता है। ऐसे वीर्य गुण का कार्य है। उसका प्रारंभ सम्यक दर्शन के पहले स्वरूप की पहचान के काल में जो भाव भाषण होता है तब से ही स्वरूप सम्मुखता का पुरुषार्थ का प्रारंभ होता है और वो भाव भाषण या स्वरूप की पहचान जब होगी या जब करेंगे तभी उसका प्रारंभ होगा। वो पहचान कैसे करें ये प्रश्न भी इसमें गर्भित है। तो ये पहचान के पहले पहले ज्ञानी पुरुष की सजीवन मूर्ति तिक मूर्ति की पहचान होती है तभी स्वरूप की पहचान करने की योग्यता आती है। इसके पहले कभी किसी को आत्म स्वरूप की पहचान करने की योग्यता पैदा नहीं होती। क्यों? क्योंकि ज्ञानी है उसमें आत्म स्वभाव प्रकट है और जिस स्वरूप की पहचान करनी है उसमें आत्म स्वभाव सामर्थ्य रूप होने से अप्रगट है, पर्याय में प्रगट रूप नहीं है। जिसको प्रगट स्वभाव की पहचान नहीं हो या नहीं हो सके उसकी योग्यता में अप्रगट स्वभाव की पहचान करने की क्षमता योग्यता हो ही नहीं सकती। ऐसी परिस्थिति होने से आत्म स्वभाव की पहचान सत्संग से सत्पुरुष के योग से पहले इनकी पहचान करें और बाद में योग्यता और आगे बढ़ेगी तो स्वरूप की पहचान होगी और तब ही आत्म स्वरूप के अनुभव का पुरुषार्थ स्वसन्मुख का जागृत होगा और यही पुरुषार्थ के विश्व प्रारंभ करने का एक मौका है, तबका है, स्टेज है। कृपया सुपर प्रकाशक के संबंध में किसी प्रवचन या तत्व चर्चा में विस्तृत रूप से खुलासा करने का कष्ट करें। सुपर प्रकाशक के संबंध में मतलब अभी कोई स्पष्टन करने का प्रस्ताव नहीं है, किसी भी प्रवचन या तत्व चर्चा में इस बात को लेना है तो खास करके इस विषय में कोई प्रश्न हो तो निकालिएगा, क्योंकि ये तो एक ज्ञान का स्वपर प्रकाशक जो है वो तो शक्ति है, और वो शक्ति हमेशा हमेशा काम करती रहती है। उसमें कोई प्रश्न हो तो प्रश्नकार लिख सकते हैं, तो उस विषय में और स्पष्टीकरण देंगे। कृपया कारण व कार्य परमात्मा का खुलासा कीजिए। क्या परम पारिणामिक भाव का भाव व कारण परमात्मा एक है या अलग अलग है? परम पारिणामिक भाव को ही कारण परमात्मा नियमसार में कहा गया है, बोला गया है, इसलिए दो अलग अलग नहीं है, वो एक ही तत्व का दो नाम है। और वो कारण परमात्मा कृपया कारण व कार्य परमात्मा, कारण परमात्मा मैंने जिसका अवलंबन लेने के कारण से परमात्म दशा कार्य रूप प्रकट होती है, उसी को कारण परमात्मा मूल स्वरूप को कहते हैं, और जो प्रकट होने वाली पर्याय है उसको कार्य परमात्मा कहते हैं। इस तरह से कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा एक दृढ़ का नाम है, एक प्रकट पर्याय का नाम है। सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान के संशय विपरीत अनध्यवसान दोष दूर हो जाते हैं, जबकि ज्ञानावरण या कर्म में कोई बदलाव अथवा नाश नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि उपरोक्त दोष ज्ञान के नहीं हुए तो फिर शास्त्रों में ज्ञान के दोष क्यों बताए हैं? देखिए, जो हम शास्त्र पढ़ने का अध्ययन करने का अभ्यास करते हैं तो दो बात हमारे ख्याल में रहना जरूरी है। एक तो वो है कि आगम का विषय कितना है, अध्यात्म का विषय कितना है, और आगम अध्यात्म की संधि कैसे होती है। ये दो बात के विषय में अगर हमारी समझ में स्पष्टता नहीं होती है, दोनों विषय को हम स्पष्टतया जहां तक नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं हम घोटाला करेंगे या उलझन में आ जाएंगे। तो ये जो संशय विपर्यय और अनध्यावसान है वो ज्ञान के दोष है, जिसके साथ ज्ञानावरणी कर्म का संबंध नहीं है। ज्ञानावरणी का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध ज्ञान के साथ होता है वो एक आगम का ऐसा विषय है कि जिससे ज्ञान की गति मालूम पड़ती है कि अज्ञान में अल्पता हो या ज्ञान का उघाड़ ज्यादा हो, अल्प उघाड़ हो या ज्यादा उघाड़ हो, उसके साथ ज्ञानावरणी का संबंध होता है। वो आगम पद्धति के विषय में जाता है, अध्यात्म पद्धति में वो बात नहीं है। अध्यात्म पद्धति में आत्मा जो अध्यात्म तत्व है, अपना स्वरूप, उस स्वरूप के अवलंबन में जो अवरोध करता है स्वयं ज्ञान का परिणमन जिस प्रकार का, उस प्रकार के तीन दोष का वर्णन किया है अध्यात्म के प्रकरण में, वो है संशय विपर्यय और अनध्यवसान। तो इस प्रकार से दोनों बात अलग अलग है। अध्यात्म में अध्यात्म का केंद्र स्थान आत्मा होता है, और आत्मा के शुद्ध परिणाम होते हैं। और आगम में इस विषय को छोड़ करके, अध्यात्म के विषय को छोड़ करके जितना भी विषय होता है वो आगम के पद्धति में, आगम के खाते में जाता है। इसका स्पष्टीकरण परमार्थ वचनिका में पंडित बनारसी दास जी ने अच्छी तरह दिया है। इसलिए हर जगह इस दो बात को स्पष्ट रूप से अलग अलग समझे, क्योंकि ये बात स्वानुभव के विषय में भी खड़ी होती है। अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी इस विषय में जब स्पष्ट नहीं होते हैं तो उनको उलझन होती है कि ये जो स्वानुभव होता है उसमें तो ज्ञानावरण का क्षोभ है या क्या बात है, आखिर में तो मतिकी और सुध का क्षोभ की तो बात होती है। तो मति ज्ञान और सुख ज्ञान तो परोक्ष होता है, आदि परोक्ष प्रत्यक्ष मन्य। तो फिर ये कैसे स्वानुभव को प्रत्यक्ष बोला गया है? तो ये दो प्रकरण अलग है, वो लोगों को समझ नहीं है। ये जो मति श्रुत का ज्ञानावरणी के साथ जो संबंध है और इसके लिए वो प्रत्यक्ष, वो आगम का विषय है, वो अध्यात्म का विषय में वो बात नहीं आती है। और जो स्वानुभव होता है वो अध्यात्म के प्रकरण की बात है, उसमें प्रत्यक्षता लेने में आती है। वेदन प्रत्यक्ष आत्मा, उसमें ज्ञानावरणी का शोषण की बात नहीं चलती है। तो ये गड़बड़ होती है अध्यात्म आगम की। अलग अलग बात को अलग अलग रूप से जब अपेक्षावश नहीं समझने में आती है तो ये गड़बड़ होती ही है, और ये शास्त्र के अभ्यासी लोगों को भी होती है। ये इस विषय में स्वानुभूत्यावरण कर्म नाम का कोई कर्म है ही नहीं, ऐसी कोई प्रकृति है ही नहीं। लेकिन वो भाव की बात है कि जो भाव स्वानुभूति को आवरण करते हैं उसको स्वानुभूत्यावरण कहते हैं। प्रकृति में कहा कोई स्वानुभूत्यावरण है, इसलिए वो आगम का विषय में नहीं जाता, ऐसी बात है। ध्यान का स्वरूप क्या है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम के तत्वार सूत्र का सूत्र है भगवान उमा स्वामी का। किसी एक विषय में प्रश्न तो बहुत आए हैं, आ रहे भी हैं, समय की मर्यादा में जितने लेंगे उतना लेंगे, फिर कल के लिए पेंडिंग रखेंगे। ध्यान का स्वरूप है किसी एक विषय में एकाग्र होना, लीनता होना, तन्मय होना, ये ध्यान का विषय है। ये ध्यान की जनरल डेफिनेशन है, सामान्य परिभाषा है, और एकाग्र होना ये इसकी प्रक्रिया है। दूसरा प्रश्न है ध्यान की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। तो एकाग्र होना यही ध्यान की प्रक्रिया है। स्वरूप भी वही है और प्रक्रिया भी वही है। ध्यान की प्रक्रिया में उसके कुछ कार्यों को अगर सोचा जाए तो ध्यान माने एकाग्रता, एकाग्रता माने ध्यान। एकाग्रता कब होती है? कि जब जब किसी विषय में आकर्षण होता है तब एकाग्रता होती है। कारण को देखा जाए तो प्रक्रिया की थोड़ी चर्चा गहराई से करते हैं कि किसी भी विषय पर आसक्ति होती है, आकर्षण होता है, तभी एकाग्रता हो सकती है। इसके बिना एकाग्रता नहीं हो सकती है। और आसक्ति कब होती है? फिर उसी विषय पर जब प्रेम होता है तो आसक्ति होती है, बिना प्रेम आसक्ति नहीं होती। तो उस तरह से मूल में जब हमें कहीं भी प्रेम होता है वहां आसक्ति होती है, और आसक्ति होती है उसी का ध्यान होता ही रहता है, करना नहीं पड़ता। इसलिए ध्यान है वो करने से नहीं होता, सहज होता है। तीसरा प्रश्न प्रश्नकार ने पूछा है कि ध्यान करने से होता है अथवा सहज होता है, कि ध्यान सहज होता है, ध्यान करने से नहीं होता है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है, ये ध्यान की वास्तविकता है। फिर भी यहां पर एक प्रश्न और भी हो सकता है स्पष्टीकरण के लिए, कि ज्ञानी भी कभी एकांत में बैठ करके और मुनि भी जंगल में रह करके ज्ञान ध्यान में रहने का प्रयोग करते हैं, पद्मासन में विराजमान होते हैं या खड़गासन में रहते हैं वो ध्यान करते हैं, लेकिन उनके पास सहज परिणति है। ज्ञानी हमेशा हमेशा ध्यानी तो होते ही है, उसको धर्म ज्ञान होता है कि नहीं होता है, कि बिना धर्म ध्यान तो कोई ज्ञानी होते ही नहीं। ऐसे तो सभी प्राणी ध्यानी होते ही है, ध्यान तो चारित्र गुण की व्यवस्था है, चाहे अर्थ ध्यान हो चाहे धर्म ध्यान हो। सामान्यतः अर्थ ध्यान होता है, कभी कभी किसी को रौद्र ध्यान होता है, अलग बात है, लेकिन अर्थ ध्यान तो सभी को होता है। इस तरह से मुख्य रूप से ज्ञानी को धर्म ध्यान की परिणति हमेशा होती है, लेकिन उसको मुख्य रूप से ध्यान नहीं बोला जाता। जब शुद्धोपयोग होता है और उपयोग से स्वरूप में लीनता होती है तब मुख्य रूप से उनको ध्यान बोला जाता है। तो ऐसा ध्यान होने के लिए ज्ञानी सहज परिणति में जो आत्मभाव है और सहज परिणति का विषय रूप जो अपना स्वरूप है उसमें उसमें एकाग्रता लीनता होने का आविर्भाव करने का प्रयोग करते हैं। उस प्रयोग में भी जहां तक विकल्प चलता है वहां तक कृत्रिमता है उतने अंश में, और वो सहज परिणति पुरुषार्थ के दौरान उग्र होती है तब सहजता से शुद्धोपयोग होता है। जो शुद्धोपयोग होता है वो सहजता से होता है, कृत्रिमता से हो ही नहीं सकता, और ज्ञानी को तो पर्याय का कर्तापना तो होता ही नहीं, वो तो अकर्ता हो ही चुके हैं, पर्याय विद्धि तो उसकी खत्म हो गई है। इसलिए जो ध्यान होता है वो सहज ही होता है, कृत्रिमता से करने से नहीं होता। और प्रश्न है ध्यान का ध्येय और ज्ञेय क्या है। ध्यान का संबंध तो ध्येय के साथ होता है, वो अपना स्वरूप है। ज्ञान का संबंध ज्ञेय के साथ होता है, लेकिन ध्यान का संबंध तो ध्येय के साथ होता है, और ज्ञान का ज्ञेय अपने स्वरूप को ही रखे, अन्य ज्ञेय से तो हमारा कोई प्रयोजन है ही नहीं। इस तरह से आज के जो प्रश्न है उन्हें समाप्त करते हैं, बाकी के जो प्रश्न हैं कल के लिए पेंडिंग रखते हैं, कल देरी की जाए।